सहज राजयोग, कर्मयोग और निर्विकल्प समाधि। आज का विषय अत्यंत सुंदर है, योगाभ्यास द्वारा पवित्रता और शांति। वर्तमान समय योग के विषय पर अनेकानेक पुस्तकें और चर्चाएं उपलब्ध है, परंतु इस चर्चा में हमने इसे अति सरल रूप देकर कर इस विषय को स्पष्ट किया है। इसमें जिस योग का उल्लेख है, इसका बोध स्वयं गीता ज्ञानदाता ने कराया है। इस योग का थोड़े दिन अभ्यास करने से भी मनुष्य की स्थिति अव्यक्त होने लगती है। वह स्वयं को प्रकाशमय और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न अनुभव करता है और आनंद तथा परम शक्ति और परम शांति का रसस्वाद करता है। यह योग हमें अकर्मण्यता नहीं सिखाता, बल्कि कर्मों के लिए सक्षम और सशक्त बनाता है और साथ साथ परमपिता परमात्मा की अनुभूतियां कराता है। आशा है कि योगा अभिलाषी इस द्वारा परमात्मा से पवित्रता और शांति के वरदान प्राप्त करेंगे। सहज योग। योग का विषय बहुत ही मधुर विषय है। योग शब्द सुनते ही मनुष्य का मन उड़कर परमपिता परमात्मा के पास पहुंचने की चेष्टा करने लगता है। योग के द्वारा जो ईश्वरीय आनंद प्राप्त होता है और मनुष्य के मन में एक अलौकिक मस्ती रहती है, उसका अनुभव करने की इच्छा तो बहुत मनुष्यों को होती है, परंतु योग की सहज और वास्तविक विधि का पता न होने के कारण वे ईश्वरीय सुख और प्यार के अनुभव से तथा मन की सच्ची शांति से वंचित रह जाते हैं और जीवन के अनमोल क्षणों को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। वास्तव में परम प्रिय परम पिता परमात्मा ने परमात्मा से मिलने अर्थात उनसे योग युक्त होने का सभी को अधिकार है, और योग युक्त होना कठिन भी नहीं है। योग में स्थिर होने और जीवन में सच्चे सुख शांति का अनुभव करने के लिए मुख्य रूप से 6 बातें आवश्यक है। पहला तो निश्चय है। इन 6 बातों में सबसे पहला स्थान निश्चय को प्राप्त है, क्योंकि मनुष्य का जो निश्चय है, निश्चय ही उसके मन वचन और कर्म का नेता है। मनुष्य जब बुद्धि से किसी चीज को अच्छा या बुरा निश्चय कर लेता है, तब उसका मन उस चीज को प्राप्त करने या छोड़कर या छोड़ने का चिंतन करता रहता है, और उसे प्राप्त करने या छोड़ने के विचार से ही वह कर्म अथवा पुरुषार्थ भी करता है। अतः योगाभ्यास, जो कि मन को ईश्वर की ओर लगाने ही का दूसरा नाम है, तभी हो सकता है जब मनुष्य योगी जीवन को ही अपना लक्ष्य निश्चय करे, परमात्मा की लगन में ही मगन होने का पुरुषार्थ को ही अपना पुरुषार्थ निश्चय करे और स्वयं को अव्यक्त आत्मा निश्चय करे। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि जिस मनुष्य को आगे बताई गई बातों में निश्चय होता है, वही योगी हो सकता है, अथवा उसी का योगाभ्यास सुविधा से निर्विघ्न रूप से तथा निरंतर ठीक चलता रहता है। पहले की विषय विकारों वाले जीवन में सच्चा सुख नहीं है। सबसे पहले तो पहली मनुष्य को यह निश्चय होना चाहिए कि भोगी जीवन अथवा विकारी जीवन, माने कि काम क्रोध लोभ आदि वाला जो जीवन है, तो कोई जीवन ही नहीं है, बल्कि विकारी जीवन तो न कर्म जीवन है। उसका तो हरेक मिनट मृत्यु के तुल्य है, क्योंकि उसका परिणाम बड़ा ही खराब और बहुत ही बुरा है। जब तक मनुष्य विकारों वाले जीवन को ही अपना जीवन माने हुए है, तब तक तो ईश्वरीय आनंद का रस ले ही नहीं सकता। अतः घर गृहस्थ में रहते हुए भी मनुष्य जब विकारों को विष समझने लगता है और यह निश्चय करने लगता है कि विकार तो आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं और योग ही अमृत है, प्रभु की स्मृति ही सुखदायक है, तभी योगाभ्यास के लिए उसकी भूमिका अनुकूल बनती है। जब मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि भोगी का जीवन तो रोग और शोक का जीवन है अथवा क्षण भंगुर और फीके सुख का जीवन है, इसीलिए अब इन विकारों से छूटने का पुरुषार्थ करूंगा और विषय वैतरणी में डूबते हुए अपने जीवन के बेड़े को निकालने का पुरुषार्थ करूंगा, तभी वह योग की ओर आगे बढ़ सकता है। दूसरे की मैं आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा की संतान हूं। अज्ञानी मनुष्य स्वयं को देह निश्चय करके दैहिक संबंधों के भान में रहता है और दैहिक माता पिता से ही केवल एकाध जन्म के लिए ही अल्प संपत्ति अथवा सुख का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करता है, परंतु योग का तो आधार ही है आत्मा निश्चय है। योग स्वयं को एक आत्मा निश्चय करने से और परमपिता परमात्मा की संतान निश्चय करने से ही अविनाशी सुख शांति तथा देवी राज्य भाग्य का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करा लेता है। नास्तिक मनुष्य का परमात्मा के अस्तित्व में निश्चय न होने के कारण वह ईश्वरीय आनंद से वंचित रहता है और स्वयं को ही शिव अथवा परमात्मा निश्चय करने वाले मिथ्या ज्ञानी मनुष्य परमपिता परमात्मा से जन्म सिद्ध अधिकार लेने का पुरुषार्थ नहीं करता। अतः योगाभ्यास जिसका अर्थ ही है परमात्मा से संबंध माने कि कनेक्शन जोड़ना, तब हो सकता है जब आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानकर आनंद के सागर शांति के सागर सर्वशक्तिवान तथा कल्याणकारी परमात्मा को माता पिता बंधु से सखा अथवा शिक्षक और गुरु निश्चय किया जाए। योगाभ्यास के लिए यह निश्चय जरूरी है। दूसरे की समर्पणता, अभी जो बताई गई बातें हैं इनमें निश्चय होने की जो बात स्पष्ट की गई है उसके अतिरिक्त योगाभ्यास के लिए समर्पणता की भी आवश्यकता है। आज तन मन और धन में आसक्ति होने के कारण ही मनुष्य देह अभिमानी और संपत्ति अभिमानी है। अतः जब मनुष्य अपना तन मन और धन परमात्मा ही के हवाले समझता है तभी वह नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होता है, अर्थात तब ही उसकी आसक्ति मिटती है और बुद्धि में परमात्मा की स्मृति टिक पाती है। जब मनुष्य सर्व भाव से परमात्मा पर न्योछावर हो जाता है तो परमात्मा भी त्रिलोकी सहित उस पर न्योछावर हो जाते हैं और तभी मनुष्य आनंदित होता है। लोग राजा जनक का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब उसने अपना सर्वस्व अष्ट वक्र को समर्पित कर दिया था तब उसका मन एकाग्र हुआ। अतः योगाभ्यास की इच्छा वाले गृहस्थी को चाहिए कि वह स्वयं को एक निमित्त माने कि ट्रस्टी अर्थात एक न्यासी माने और सब कुछ प्रभु अर्पण करते हुए अनासक्त भाव से कर्म करे। जब तक मनुष्य को अपने पुत्र कलत्र धन धान्य तन और तबेले में आसक्ति है तब तक उसे योग का रस स्वाद हो ही नहीं सकता। योगाभ्यास से आसक्ति नष्ट होती है, परंतु आसक्ति मिटाने से ही योग ठीक और शक्तिशाली होता है। दोनों बातें एक दूसरे पर आश्रित है। अतः योगाभ्यास की इच्छा वाले मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि हमें घर बार का या वस्त्रों का संन्यास नहीं करना है बल्कि इनसे आसक्ति का संन्यास करना है। केवल इनसे ही आसक्ति का त्याग नहीं करना बल्कि अपने तन से भी आसक्ति को हटाना है और इस सृष्टि को बुद्धि से भूलना है और इसकी बजाय परमपिता परमात्मा से अपना संबंध जुटाना है और मुक्ति धाम तथा स्वर्ग की तरफ अपना मुख करना है। तीसरे, सरलता और समत्व। सरल चित्त वाला मनुष्य ही सहज में स्वरूप स्थित हो सकता है। सरल चित्त वाले मनुष्य की बुद्धि उधेड़ बुन में नहीं रहती, अतः योग के लिए मन की सरलता बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति कुटिल है चाहे वह कितना ही बुद्धिमान हो उसके योग का अभ्यास पूर्ण रूप से साफ नहीं हो सकता। सरलता पर ही साहिब माने की परमात्मा राजी है। चौथे की आहार की शुद्धि और ब्रह्मचर्य। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता उसके स्वभाव में समत्व का आना अथवा उसकी स्मृति में स्थित होना बहुत ही मुश्किल है। योगा अभ्यास का अर्थ ही परम पवित्र परमात्मा पर मन को एकाग्र करना और ईश्वरीय गुणों अथवा संबंध का मनन करना है। इससे स्पष्ट है कि जो मनुष्य अपवित्रता की बात सोचता है अथवा आसुरी कर्म का मनन करता है वह तो योगी के लक्षण से विपरीत ही लक्ष्य अपनाकर भोगी ही बनने का पुरुषार्थ करता है। यह निश्चित बात है कि ब्रह्मचर्य व्रत के बिना मनुष्य में न स्मृति स्थिर हो सकती है और न सहनशीलता या समत्व की भावना आ सकती है। परम पिता परमात्मा की मिलावट रहित शुद्ध और ध्रुव स्मृति में स्थित प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने आहार पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आहार का मनुष्य के विचार से बड़ा गहरा संबंध है। मनुष्य जैसा आहार लेता है उसका वैसा ही सत्व बनता है और सत्वगुणी अर्थात पवित्र भोजन करने से उसकी बुद्धि पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसके मन की एकाग्रता भी वैसे विषयों पर ही होती है। पांचवे की स्मृति। प्रायः लोग समझते हैं कि योग बहुत ही कठिन चीज है, परंतु वास्तव में स्मृति ही सहज समाधि है। जब जब मनुष्य अपनी देह के भान को भूलकर बिंदु सदृश ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा की स्मृति पर टिक जाता है तो मनुष्य आत्मा का परम पिता से योग होता है। स्मृति से हमारा अभिप्राय किसी मंत्र का स्मरण या किसी रूप का ध्यान करना नहीं है, बल्कि सर्वोत्तम गुणों वाले जो परम पिता परमात्मा शिव है उन्हीं से योग युक्त होना है। जितना जितना कोई मनुष्य नष्टो मोह होता है उतनी उतनी ही उसकी स्मृति ध्रुव और अव्यभिचारी अर्थात शुद्ध होती है। परम पिता परमात्मा की शुद्ध स्मृति में रहने से आत्मा शुद्ध एवं पावन होती है और मुक्ति धाम तथा जीवन मुक्ति धाम में जाती है। परमात्मा की स्मृति में यदि अनन्य जीवों या पदार्थों की याद भी मिश्रित हो जाती है तो उसका बुद्धि योग शुद्ध अथवा अव्यभिचारी न होने से उसकी स्थिति और वृत्ति भी अशुद्ध होती है और गति भी तद अनुसार ही होती है, क्योंकि स्मृति से ही स्थिति वृत्ति और कृति का संबंध है। अतः स्मृति को ठीक तरह से ईश्वर में लगाने से ही संसार की स्थिति भी बदल जाती है। आपने देखा होगा कि जब कोई मनुष्य किसी बीमारी के कारण अथवा किसी सदमे या अत्यंत वृद्धावस्था के कारण स्मृति को खो बैठता है तो वह अनाप शनाप बकने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य को आत्मा की तथा परम पिता परमात्मा की स्मृति नहीं रहती तब उसका भी बोलना चलना और रहन सहन करना देवी मर्यादाओं के अनुकूल नहीं रहता। अतः आप ही सोचिए कि वृत्ति को भी परिवर्तन करने के लिए स्मृति का कितना महत्व है। वास्तव में यदि स्मृति से ही परमात्मा का सहारा मिल सकता है, स्मृति से ही सहनशीलता आती है, स्मृति ही से सत्य स्वरूप परमात्मा का संग होता है। स्मृति मानो एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके द्वारा मनुष्य को सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से शक्ति मिलती है और जिससे कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के विकर्म रूपी जो कीटाणु है अथवा कृमियां है वो नाश हो जाती है। योग के लिए मुख्य रूप से मनुष्य को मुख्य रूप से पांच बातों की स्मृति रखनी चाहिए। पहली, मैं कौन हूं और इस सृष्टि रूपी सराय में कहां से आया हूं और मुझे कहां, कब और कैसे वापस घर जाना है। दूसरे, अन्य जो भी शरीरधारी अथवा मनुष्य तनधारी है उनके साथ मेरा वास्तविक संबंध क्या है तथा परमात्मा के साथ मेरा संबंध क्या है और परम पिता परमात्मा से मुझे क्या प्राप्ति होंगी। तीसरे, मेरी प्रारंभिक स्थिति कैसी थी और वह कैसे और कब बदली और उसमें गिरावट क्यों आई तथा अब मैं उसी स्थिति को कैसे प्राप्त कर रहा हूं और उसमें परम पिता परमात्मा ने मुझे कैसे जगाया है। चौथी, अब इस जन्म में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे परमात्मा पर न्योछावर होना चाहिए और किसकी मत पर चलना चाहिए ताकि मेरा यह जो जीवन है वह योगी जीवन ही बना रहे। पांचवे, इस जीवन में योगी बनने से अभी और बाद में क्या लाभ है, कितनी जबरदस्त प्राप्ति है और परमात्मा का बनने में कितना आनंद है। जब मनुष्य इन पांचों प्रश्नों के उत्तर की स्मृति में रहता है तो उसका मन योग स्थित हो जाता है। छठवे की अभ्यास। जन्म जन्मांतर दैहिक संबंधों के कारण मनुष्य का देह अभिमान पक्का हो गया है और मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा की विस्मृति हो गई है। अतः अब ईश्वरीय स्मृति के अभ्यास की आवश्यकता है। बार बार अभ्यास करने से ही स्मृति शुद्ध और ध्रुवी होंगी। केवल यह निश्चय हो जाना कि मैं आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हूं, पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसकी स्मृति का अभ्यास भी आवश्यक है, ताकि यह निश्चय आचरण में आ जाए। कार्य व्यवहार में बरतते हुए मनुष्य को फिर फिर विस्मृति हो जाती है और वह देह अभिमानी हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन प्रातःकाल अमृत वेले तथा रात्रि को तो ईश्वरीय स्मृति में निष्ठा माने स्थित होने का अभ्यास करे, परंतु दिन भर में कई बार समय निकालकर कुछ कुछ मिनट ही सही प्रेम और उल्लास से ईश्वरीय स्मृति में टिकने का अभ्यास भी करता रहे। अभ्यास के प्रारंभिक दिनों में सुस्ती, कभी थकावट, कभी हिचकिचाहट और कभी उदासीनता की लहर आए तो भी अपने अभ्यास को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि योग से गिरकर फिर चढ़ना अधिक कठिन हो जाता है। अतः सदा याद रखना चाहिए कि योग तो बड़ा सरस और मधुर है, और जबकि उसे अतुल्य प्राप्ति है, तब तो मन की विपेक्षता को हटाकर अभ्यास में लग जाना चाहिए, ही यही उचित और कल्याणकारी है। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो योग के बारे में बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, व्याख्यान सुनते हैं और बौद्धिक रूप से इस विषय को समझते भी हैं, तथापि वे योगी नहीं है, क्योंकि वे योग का अभ्यास नहीं करते। अभ्यास करने वाले को ही मन की स्थिरता अथवा एकाग्रता का लाभ होता है, आनंद रस की अनमोल उपलब्धि होती है और परिवर्तन द्वारा दिव्यता की प्राप्ति होती है। अतः बार बार अभ्यास ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को योग के उत्तम शिखर पर पहुंचा देता है। योगा अभ्यासी की सहज विधि योग। योगा अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत और शांत स्थान पर बैठना चाहिए। बैठक के लिए किसी स्वस्थ स्थान पर कोई गद्दी या दरी आदि बिछाकर उस पर श्वेत चादर बिछाना अच्छा है। यदि आसपास का कमरा श्वेत चादरों से ढका हुआ हो तो अधिक उपयोगी है। योगा अभ्यास के स्थान पर यदि न बोला जाए अथवा धीमे स्वर में बोला जाए तो उत्तम है। वहां पर अगरबत्ती, धूप आदि जला देने से भी वातावरण आध्यात्मिक बन जाता है। योगा अभ्यास के लिए यूं तो हर समय अनुकूल है, परंतु प्रायः ब्रह्म मुहूर्त अथवा अमृत वेले और सायंकाल संध्या समय, जबकि दिन और रात्रि के मिलते हैं, विशेष तौर पर अनुकूल होता है। रात भर नींद की अवस्था में मनुष्य का मन कुछ आराम कर लेता है और स्थिर होने लगता है। अतः प्रायः जब मनुष्य उठता है तब उसका मन अधिक चंचल नहीं होता, और उस समय वातावरण में भी अधिक विचार तरंगे अथवा ध्वनि तरंगे नहीं होती, क्योंकि बहुत लोग तब सोए हुए होते हैं और भगत लोगों के भक्ति, पूजा, साधना आदि में लगे हुए होने से वातावरण सहायक भी होता है। मनुष्य को उस समय दुकान, दफ्तर या दुनियादारी की चिंता भी नहीं होती। इस प्रकार संध्या समय जब रात्रि होने लगती है तब भी बहुत लोगों के मन में कार्य को समेटने, व्यापार व्यवहार को बंद करके घर की ओर लौटने और सुखपूर्वक बैठने की चेष्टा होती है। और प्रसिद्धि भी है कि उस समय देवताएं सैर करने निकलते हैं तथा भगत पूजा आदि करते हुए आरती आदि करते हैं, और जंगलों में रहने वाले जो साधक है वो भी साधना में लग जाते हैं। योग के लिए न प्राणायाम जरूर करने की जरूरत है और न ही किसी विशेष आसन पर बैठकर हठ पूर्वक योग करने की, या वो जो दिखाते हैं उसको बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य को जिस भी तरह सुखपूर्वक बैठने का अभ्यास हो वह वैसे ही बैठे। हाँ, उसके मन में चुस्ती और शरीर की जो लहर है वो खुशी की लहर होनी चाहिए, और आलस्य या थकान नहीं होनी चाहिए। आंखें बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल मन को प्रेम पूर्वक प्रभु की स्मृति में लगाने की आवश्यकता है। उसके लिए पहले तो इस स्मृति में स्थित होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप हूं, बिंदु रूप हूं और भ्रुकुटी में मेरा वास है। सूर्य और तारागण के भी पार जहां लाल लाल सा प्रकाश है, उस प्रकाश लोक अर्थात ब्रह्म लोक से मैं इस मनुष्य सृष्टि में आई हूं। अब मुझे पुनः वापस उस ब्रह्मलोक में जाना है जहां पवित्रता और शांति है और आत्मा निर्विकार और शक्ति संपन्न है, वह ब्रह्मलोक ही तो हम आत्माओं का वास्तविक घर है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, वह भी आत्मा ही है और बिंदु रूप ही है, परंतु वह ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और प्रेम के सागर है और सर्वशक्तिवान है, वह भी ब्रह्मलोक ही के वासी है। इस विषय में हमें मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मलोक कहाँ है। मनुष्य सृष्टि के सूर्य और तारागण के भी पार एक अन्य लोक है जिसे सूक्ष्म लोक कहते हैं। उसमें सूक्ष्म एवं प्रकाशमय शरीर वाले ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नाम के देवता वास करते हैं। उससे पार एक अन्य लोक है जहां ब्रह्मा नाम का एक ज्योति तत्व व्यापक है। मनुष्य आत्मा उस ही ब्रह्मलोक अथवा परम धाम से इस मनुष्य सृष्टि पर आई है। उसी ब्रह्मलोक के वासी अर्थात सूर्य और तारागण के भी पार ज्योति बिंदु रूप परमात्मा शिव पर ही मन एकाग्र करना चाहिए। जैसे तारा, तार जो होती है, केबल होती है, वायर होती है, उसके द्वारा बल्ब का कनेक्शन पावर हाउस से जोड़ देने से बल्ब में लाइट और माइट माने की शक्ति आने लगती है, वैसे ही ईश्वरीय याद ही बिना तंतु के ऐसी तार है, ऐसी केबल है जिस द्वारा आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है। अतः इस प्रकार की स्मृति द्वारा मन को परमात्मा से जोड़ना चाहिए। मैं तो परमपिता परमात्मा की संतान हूं, ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं सर्वशक्तिवान, त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, आनंद के सागर, सभी आत्माओं के परमपिता, देवों के भी देव, ज्योति बिंदु परमात्मा शिव ही की हो चुकी हूं। माने ऐसा मनन करते समय मन की आंख ब्रह्म लोक में परमपिता शिव पर लगी होनी चाहिए। आहा, वहां से मेरे ऊपर प्रकाश और शक्ति उतर रही है और मेरे माध्यम द्वारा सारे संसार में विकीर्ण यानी कि परावर्तित होकर उसे भी पवित्रता से सींच रहे। आहा, कितना आनंद है इस अवस्था में। मैं तो एक प्रकाश का गोला हूं, शक्ति स्वरूप हूं, मुझे इतनी शक्ति मिल रही है, इतनी ज्योति मिल रही है। शिव बाबा, आपने मुझे अपना बनाया है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। यही तो वास्तविक जीवन है, सुख है। तो इसी अवस्था में आप ही तो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, कलयुगी सृष्टि को बदलकर सतयुगी बनाने वाले और सबको मुक्ति तथा जीवन मुक्ति देने वाले हैं। शिव बाबा, आप तो सद्बुद्धि देकर मनुष्य को देवता बना देते हैं और 21 जन्मों के लिए स्वार्गिक राज्य भाग्य देते हैं। इस प्रकार मनन करते करते प्रेम विभोर होकर परमपिता परमात्मा शिव की स्मृति में तन्मय हो जाना चाहिए और आनंद तथा शांति के रस स्वाद में एकाग्र चित्त स्थिति में देह की शुद्ध बुद्ध भले भूले हुए ऐसे परम धाम ब्रह्मलोक में प्रकाश में बैठकर लाइट माइट और शांति का स्वरूप होकर कर बैठना चाहिए। यह अभ्यास केवल अमृत वेले और संध्या समय ही नहीं बल्कि दिन भर कार्य करते हुए भी करना चाहिए। दूसरे नर नारियों को कार्य व्यवहार के समय उन्हें भी आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए, अर्थात यह स्मृति होनी चाहिए कि ये सभी भी भ्रुकुटी में रहने वाली ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, परमपिता शिव की अमर संतान है, मैं भी एक आत्मा ही हूं। चलते फिरते मनुष्य के अपने मन में यह धुन लगी हुई रहनी चाहिए कि मैं तो परम धाम से इस सृष्टि रूपी क्षेत्र पर आया हुआ हूं, यह देह रूपी चोला लेकर कर मैं थोड़े समय के लिए अपना पार्ट बजा रहा हूं। अब तो यह सृष्टि रूपी नाटक ही पूरा होने वाला है और यह चोला यहीं छोड़कर, सब दैहिक नाते यहीं छोड़कर मुझे वापस ब्रह्मलोक में लौटना है। मैंने मोह ममता तथा आसक्ति की जंजीरों को तोड़ दिया है, मैं तो मुक्तिदाता प्रभु का बच्चा हूं, इसीलिए आजाद ही हूं। हाँ, लोक सेवा अर्थ तथा जीवन निर्वाह अर्थ मुझे कर्म करना है, परंतु मैं तो एक ट्रस्टी हूं, मैं जैसा भी हूं प्रभु का हूं और मेरा सब कुछ उसी का है। मैं अपनी कर्म इंद्रियों रूपी अमानत माने की धरोहर द्वारा खयानत नहीं करूंगा, अर्थात कोई भी विकर्म नहीं करूंगा और पाप तथा ताप का भागी नहीं बनूंगा। शिव बाबा, मैं तो आपका हूं बच्चा हूं और आपके वास्तविक तथा आदिम स्वरूप में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, पवित्र और बिंदु रूप हूं। अब मैं सर्व भाव से आपकी शरण में आ गया हूं, आप ही का बन गया हूं और आपकी आज्ञा अनुसार चलकर अपने जीवन को उच्च बनाने का पुरुषार्थ करूंगा। इस प्रकार दफ्तर में, दुकान में या घर में कार्य करते हुए भी मन में आत्मिक स्मृति और ईश्वरीय स्मृति को बनाए रखना चाहिए। इससे कार्य क्षमता बढ़ेगी, निर्णय शक्ति तीव्र होगी और विवेक प्रखर होगा। दृष्टि और वृत्ति पवित्र रहेंगी, सहनशीलता आदि दिव्य गुण आएंगे और हर्ष, उल्लास, शांति, शक्ति और दूसरों के प्रति कल्याण की भावना का अनुभव होगा। थकावट नहीं होगी, दुविधा, असमंजस, उलझन, खेद या संताप का अनुभव नहीं होगा। मनुष्य स्वयं को वायु के समान हल्का अनुभव करेगा और घर तथा बाहर के कर्तव्यों को निभाते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा रहेगा तथा निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ईर्ष्या, द्वेष की परिस्थितियों में भी एक रस, अल्पित और अविकारी और आनंद निगम रहेगा। इस प्रकार अपने योगी जीवन और पवित्र जीवन द्वारा वह अनेक आत्माओं को भी आत्मा रूपी दीपक जगाने तथा उनका कल्याण करने के निमित्त बनेगा और अपने कुटुंबी जनों पर भी अच्छा प्रभाव डालकर उन्हें भी जीवन को उच्च बनाने की प्रेरणा देगा। मन चंचल क्यों है? अगर किसी मनुष्य के पास रहने के लिए मकान ना हो तो वह गली गली घूमता है कि कहीं कोई खाली मकान रहने के लिए मिले। इसी प्रकार आज के व्यक्ति का मन इसीलिए चंचल है अथवा इधर उधर इसीलिए घूमता है कि कहीं कोई शांति का ठिकाना मिल जाए। अतः मन की चंचलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शांति के सागर परम पिता परमात्मा को तथा परम धाम में को जानकर मन को वहां ठिकाना दे दिया तो मन शांत हो जाएगा। इसी प्रकार इसी का नाम योगा अभ्यास है। क्या निष्काम कर्म करना ही कर्म योग है? ऐसे भी बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कर्म करते चलना ही मनुष्य का कर्तव्य है। वे कहेंगे कि मनुष्य को निष्काम कर्म करना चाहिए, यही कर्म योग है। इससे मनुष्य अंत में भी सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। परंतु सोचने की बात यह है कि आज संसार में कर्म तो पहले से भी अधिक हो रहा है और कर्म तो होता भी आया है, परंतु फिर भी दुनिया दुखी क्यों है? स्पष्ट है कि कर्म तो हो ही रहा है परंतु कर्तव्य नहीं हो रहा है अथवा धर्म संगत कर्म नहीं हो रहा है। निष्काम कर्म तो कोई होता ही नहीं है क्योंकि कामना तो निष्काम में भी भरी हुई है। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म से तो कोई छूट ही नहीं सकता। भेद केवल कर्तव्य और अकर्तव्य का है। मनुष्य कर्म करते हुए परमात्मा की याद में नहीं रहता और यह भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं और दूसरों के साथ भी मेरा आत्मिक संबंध माने की नाता है। कमी केवल इसी बात की है, आज जो लोग प्रायः प्रातः से संध्या काल तक दफ्तर में, दुकान में या घर में कर्म के लिए चले जाते हैं, उन्हें हम कर्मचारी माने वर्कर, व्यापारी माने कर्म रूपी व्यापार करने वाले या व्यवसायी तो कहेंगे, परंतु उन्हें हम कर्मयोगी की संज्ञा नहीं दे सकते क्योंकि कर्म करते हुए उनका मनोयोग अथवा बुद्धि योग परम पिता परमात्मा से नहीं है। ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि कर्म, अकर्म और विकर्म का अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य का अथवा धर्म और कर्म का तथा आत्मा और परम पिता परमात्मा का संबंध तथा संसार का जो ज्ञान होना जरूरी है। जब तक मनुष्य को यह ज्ञान नहीं होगा और वह उस ज्ञान के आधार पर सत्य धर्म को कर्म से नहीं जोड़ेगा या कर्म करते हुए भी योगी नहीं बनेगा, तब तक वह सत्य कर्म नहीं कर सकेगा और कर्म योगी नहीं कहला सकेगा। कर्म योगी बनने के लिए क्या क्या करना जरूरी है? आप देखेंगे कि मनुष्य जब घर में आता है तो उसे यह ज्ञान रहने के कारण कि अमुक मेरी स्त्री है, अमुक मेरे पुत्र पुत्री इत्यादि है, वह उनसे वही संबंध मानकर उस संबंध का ज्ञान पर आधारित कर्म या कर्तव्य करता है। दफ्तर में जब वह जाता है, अमुक मेरा अफसर है, इंचार्ज है, अमुक अमुक मेरे अधीन है, यह ज्ञान रहने से वह अमुक अमुक से वैसे ही व्यवहार करता है तथा कर्तव्य करता है। परंतु वह संबंध ज्ञान तो देह दृष्टि पर आधारित है, जबकि देह द्वारा कर्म करने वाली तो आत्मा ही है। अतः जैसे स्वयं को गृहस्थी मानने पर मनुष्य गृहस्थ के कर्तव्य निभाता है, दफ्तर में क्लर्क मानने पर वह क्लर्क का कर्तव्य निभाता है, वैसे ही यदि मनुष्य को आत्मा के घर माने कि शांति धाम का ज्ञान हो और वह यह भी मालूम उसे हो कि यह सृष्टि एक विराट नाटक है, शरीर रूपी मेरे वस्त्र है और मेरे संबंध इस नाटक में, मेरे जो संबंधी है इस नाटक में मेरे सहपाठधारी है, परंतु वास्तव में ये है सभी आत्मा है और कि मुझे साक्षी होकर कर उच्च कर्तव्य करना है, तो वह शांति रूपी पारलौकिक धर्म का भी पालन करेगा और दूसरों के साथ अपने वास्तविक माने कि आत्मिक संबंध को जानकर आत्मिक रीति नीति तथा विधि विधान से कर्तव्य करेगा। तब संसार के सारे सभी झगड़े रगड़े जितने भी झंझट है, तनाजे कनाजे दुख और दाग मिट जाएंगे और जहां यह मातम के मारे लोग रो रहे हैं वहां खुशी की सेनाई बजने लगेंगी और यह संसार अमर लोक अथवा स्वर्ग तथा सुखधाम बन जाएगा। दूसरे शब्दों में यूं कहा जाए कि जो मनुष्य स्वयं को आत्मा निश्चय करते हैं, सृष्टि को एक अनादि नाटक मानते हैं, परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होते हुए स्वयं को निमित्त माने की ट्रस्टी मानकर कर्म अथवा कर्तव्य करता है, वही सही अर्थों में कर्मयोगी है। कर्मयोगी और कर्तव्य का पालन, हरेक मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान तो होना ही चाहिए। यदि मनुष्य को यह मालूम ना हो कि घर वालों के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, देश या समाज के प्रति उसका कर्तव्य है क्या कर्तव्य है और स्वयं अपने प्रति भी उसका क्या कर्तव्य है, तो उसके अपने जीवन में भी अशांति पैदा होती है और समाज तथा देश में भी कलह और कलेश पैदा होता है। वह मनुष्य योग का भी ठीक प्रकार से अभ्यास नहीं कर पाता और उसका गृहस्थ भी आश्रम के समान निर्मल नहीं बनता। जब तक मनुष्य ज्ञान युक्त कर्म न करता हो तब तक वह योग की सिद्धि को भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके द्वारा किए हुए अकर्तव्य उसके योगा अभ्यास में भी बाधा डालते हैं और उसके मन को मैला तथा चित्त को बुरे संकल्पों से विक्षिप्त कर देते हैं। अतः जो गृहस्थी योगा अभ्यास का अभिलाषी है उसे कर्तव्य ज्ञान का होना भी जरूरी है। कर्तव्य और अकर्तव्य का प्रश्न जब से उठा है तब से संसार में इस प्रश्न पर मतभेद चला आया है। उदाहरण के तौर पर कई लोग तो यह कहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, अहिंसा का पालन मनुष्य का परम धर्म है तथा परम कर्तव्य है। दूसरे लोग ये कहते हैं कि अपनी रक्षा के लिए अथवा दूसरों को भी किसी अत्याचार अन्यायकारी से बचाने के लिए हिंसा करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भी हिंसा न करने से संसार के अत्याचारियों को प्रोत्साहन मिलता है। परंतु अहिंसावादी कहते हैं कि यदि दूसरे व्यक्ति हिंसा करते अकर्तव्य का दोषी बनता है तो हम क्यों उसे प्रभावित होकर कर अपना कर्तव्य माने कि अहिंसा को छोड़ते हैं। उनका कहना है कि यों सामान्य परिस्थिति में तो हरेक सामान्य व्यक्ति अहिंसक ही है, मनुष्य की कर्तव्य परायणता की अथवा अहिंसा धर्म की परीक्षा तो तभी होती है जब हिंसा की संभावना वाली परिस्थिति आती है। अतः वे यूं कहते हैं कि ज्ञानी के शास्त्र यानी ज्ञानी के जो शास्त्र तो प्रेम अहिंसा मधुर भाषा सहनशीला आदि ही है, न कि हिंसा द्वेष कटुता प्रतिशोध की भावना इत्यादि है। इसीलिए गीता में भगवान के महावाक्य है कि हे वत्स, कर्म या कर्तव्य क्या है और किस कर्म की क्या गति है, इस प्रश्न पर तो पंडित जन भी असमंजस्य में पड़े हुए हैं, उनकी बुद्धि भी मोहित है। अतः तू कर्म अकर्म और विकर्म की गति का ज्ञान स्वयं मुझसे प्राप्त कर और कर्म योगी बन। मनुष्य स्वयं तो अल्पज्ञ है और अविवेक तथा मिथ्या ज्ञान से भी प्रभावित हो जाता है, अतः कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में स्वयं ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव जो सत्य ज्ञान देते हैं उसे प्राप्त करने से ही मनुष्य तथा समाज का कल्याण हो जाता है। और मनुष्य योग युक्त होकर कर आनंद का भागी भी बन सकता है। परंतु आज जब हम कई लोगों से कहते हैं कि आप ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कीजिए और उनके लिए कुछ समय निकालिए, तो वे लोग कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान की क्या आवश्यकता है, हम तो ठीक ही चल रहे हैं, परिवार में बाल बच्चों के प्रति तथा स्त्री के प्रति हमारा जो कर्तव्य है धन कमाना और उनके कपड़े लत्ते और खान पान इत्यादि के लिए आर्थिक प्रबंध करना, वह फर्ज तो हम अच्छी तरह निभा रहे हैं। वैसे भी हम यही कोशिश करते हैं कि किसी को दुख न दें, किसी से झूठ न बोलें और किसी से ज्यादा नाजायज पैसा न ऐंठें। हाँ, बाकी आजकल के जमाने में थोड़ा बहुत हेरा फेरी तो करनी पड़ती है। क्या मनुष्य अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? परंतु वास्तव में उनका यह जो कथन है कि ऐसा है जैसा कि आपने कर्मों के बारे में स्वयं ही ये न्याय घोषणा माने कि जजमेंट करना अथवा अपने आप को स्वयं ही कर्म कुशलता का प्रमाण पत्र माने सर्टिफिकेट या सफलता का क्लियरिफिकेशन चिट दे देना, क्लियरेंस चिट दे देना, धर्मराज परमपिता परमात्मा उनके कर्मों के बारे में क्या न्याय माने कि जजमेंट देते हैं जानना, तो उस न्याय को है क्योंकि उन्हें कर्म फल तो उस फैसले माने कि न्याय के अनुसार ही मिलेगा ना। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि मनुष्य का जो कर्तव्य है और अकर्तव्य के बारे में ईश्वरीय ज्ञान होना जरूरी है, आवश्यक है। इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए अभी जो चर्चा की है पूर्व चर्चाओं में उन लोगों का उदाहरण ले लीजिए जो कहते हैं कि हम तो धन कमाकर अपने बच्चों के प्रति तथा स्त्री के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, परंतु किसी का खून तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते तथा दुखी तो नहीं देते। ज्ञान के सागर परम पिता परम पवित्र परमात्मा ऐसे लोगों के प्रति कहते हैं आप धन कमाकर बच्चों तथा स्त्री की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का कर्तव्य करते होंगे, परंतु उनके सामने क्रोध भी तो करते होंगे, उनमें मोह ममता की भावना प्रदर्शित भी तो करते होंगे, किन्हीं लोगों के प्रति कुछ निंदा सूचक शब्द व्यर्थ के शब्द भी शायद कभी कभी बोल देते होंगे। क्या क्रोध मोह आदि के अकर्तव्य नहीं है? क्या आपको क्रोध आदि विकार से युक्त देखकर विकारों की नकल करने से उन बच्चों का जीवन आगे चलकर दुखित नहीं होगा? इसके अतिरिक्त आप उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, परंतु आप उन्हें सदा के लिए रोग शोक दुर्घटना दुर्भाग्य आदि से तो रक्षित नहीं कर सकते। तो स्पष्ट है कि आपने अपना पूरा कर्तव्य नहीं निभाया। बाल बच्चों के खान पान का प्रबंध करना या उनके रहने के लिए घरदार का इंतजाम करना ये कोई उच्च कर्तव्य की पूर्णता तो नहीं है, क्योंकि इससे तो अल्पकाल का एकाकी और अपूर्ण ही सुख मिलता है। इस विधि से तो एक चिड़िया भी चोंच भर भर कर अपने नन्हे नन्हे बच्चों के लिए जहां कहीं से भी हो सकता होगा दाना ला देती है और बड़े प्रेम से वह उन बच्चों के मुख में डालती है। वह बहुत परिश्रम करके एक एक दिन का इकट्ठा करके उनके लिए घोंसला भी बना देती है। जब वह मरती है तो वह घोंसला अपने बच्चों को जायदाद के रूप में देखी जाती है। अतः बच्चों को पालने का जो कर्तव्य है वह तो पशु पक्षी भी बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। मनुष्य तो सभी प्राणियों में उच्च माना गया है, तो उनका कर्तव्य भी सभी से उच्च होना चाहिए। मनुष्य तो आचार संहिता और व्यवहार संहिता को जान सकता है, अतः यदि वह अपने कर्म के साथ धर्म को नहीं जोड़ता, बुद्धि को ईश्वरीय ज्ञान से नहीं समझौता, तो उसकी विशेषता ही क्या रही? अतः अब कर्तव्य को अथवा कर्म अकर्म तथा विकर्म को जानकर कर्म योगी बनो तो कर्म में ऐसा बल भर जाएगा कि सदा के लिए सुख शांति प्राप्त होंगी। अन्य किसी का खून नहीं किया वो आत्मा का गला दबाया होगा। लोग कहते हैं हम किसी का खून तो नहीं करते, तेज धार वाले किसी शस्त्र से वे किसी का खून नहीं करते होंगे, परंतु तेज और तीखी तलवार से भी अधिक घातक शब्द तो वे अपने मुख रूपी म्यान से निकालकर सीधे ही किसी के हृदय का छेदन कर डालते होंगे। जहर से भी अधिक जहरीली या बंदूक की गोली से भी अधिक घातक बात कहकर कर तो वे अपने जीवन में कोई कोमल हृदय को अपघात पहुंचाते होंगे। ऐसा भी न करते हो तो वे अपनी आत्मा की शुद्ध आवाज का गला दबाकर आत्मा का हनन तो करते ही होंगे। इससे भी कोई बच गया हो तो कोई गृहस्थी होगा जिसने काम कटारी चलाकर दूसरी आत्मा माने कि अपनी पत्नी के अखंड ब्रह्मचर्य को खंड खंड नहीं किया होगा। कौन है कि जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि छाताधारी फौजों को अपने हृदय रूपी हवाई अड्डे एरोडोम पर उड़ान देकर दूसरे के तन या मन रूपी देश पर उतार कर उसे हताहत नहीं किया होगा। लोग कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी को धोखा नहीं देते। हो सकता है कि कोई व्यापारी विक्रय वस्तुओं में मिलावट न करता होगा, वह इनकम टैक्स और सेल टैक्स के रजिस्टर ईमानदारी से बनाता होगा, या दफ्तर का कोई बाबू दफ्तर का काम दिल लगाकर करता होगा और झूठे बहाने बनाकर छुट्टी नहीं लेता होगा, न रिश्वत में किसी से पैसा लेता देला होता होगा। या परंतु आज जो सभी लोग स्वयं को अपने देह के पिता की संतान मानते तथा अपनी देह के पिता को ही अपना पिता बताते हैं, यह क्या छोटा झूठ है? क्या यह कम आत्मवंचन है? सारा दिन स्वयं को आत्मा की बजाय देह मानकर का चलना, यह क्या मामूली धोखा है? इस धोखे से तो चोखा नुकसान हो गया है। स्वयं को परम पिता परमात्मा की संतान न मानने के कारण ही तो अविनाशी एवं अखंड सुख रूपी ईश्वरीय संपत्ति एवं पालन से वंचित हो गया है। शायद कोई व्यक्ति आत्मा और परमात्मा को भी मानता होगा, परंतु मानना एक बात है और पहचानना दूसरी बात है, और पहचान कर तथा जानकर तद अनुसार बरतना अथवा उन पर चलना तो विशेष ही बात है। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो परमात्मा की यथार्थ जान पहचान न होने के कारण कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, अर्थात वह कुत्ते में है, बुल्ले में है, सर्प में है, बिच्छू में है, मल में है, कीचड़े में है और सब में है। उन्हें बोध ही नहीं है कि वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, और उसे सब में व्यापक मानना और सब में बतलाना गोया अपने परम आदरणीय परम कल्याणकारी परम पिता का अपमान करना है, उनकी निंदा गुलानी करना है। अतः कोई व्यक्ति किसी मनुष्य की निंदा नहीं करता होगा, परंतु वह परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापक मानकर परम निंदा का महापाप तो करता ही रहा है। वह बड़े से बड़ा अकर्तव्य करता रहा है जो उसे मालूम ही नहीं है। अतः गृहस्थ में रहते हुए अब कर्म योग की उच्च सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि मन वचन कर्म से किसी को दुख न दो और किसी भी विकार के वश कर्म न करो, और स्वयं माने की आत्मा को और अपने परम पिता परमात्मा को यथार्थ रीति से जानो। अपने आप को तथा परम पिता परमात्मा को जानना तो मनुष्य का पहला कर्तव्य है। इस ज्ञान के बिना तो मनुष्य से अकर्तव्य होते ही रहते हैं, और वह कर्म योगी की बजाय कर्म भोगी और पापी बना रहता है। पूर्व काल के अकर्तव्यों को मिटाने का कर्तव्य। अच्छा मान लीजिए कि इन सभी पापों से कोई बचकर रहता भी है, परंतु मनुष्य ने पूर्व जन्मों में भी तो कोई अकर्तव्य किए होंगे। आज जीवन में दुख और अशांति लाने वाली जो परिस्थितियां आती है, यह तो उनसे भी सिद्ध है कि मनुष्य ने पूर्व जन्मों में कई अकर्तव्य किए हैं, वरना अकारण ही तो दुख नहीं आ सकता। तो पूर्व जन्मों में किए गए उन अकर्तव्यों के संचयन को धोना भी एक कर्तव्य है, और उनको धोने की विधि को जानना भी तो मनुष्य का एक जरूरी कर्तव्य है, तथा अपने बच्चों या स्त्री आदि को भी उससे परिचित कराना भी उसका कर्तव्य है। फिर आप देखेंगे कि कर्तव्य और अकर्तव्य के भेद को जानने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि क्या देह से भिन्न कोई आत्मा नाम की भी अविनाशी सत्ता है, और क्या उसका पुनर्जन्म और पूर्व जन्म सत्य है, और उसे अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का फल किसी न किसी जन्म में मिलता है, क्या इस देह के लोक से भिन्न किसी परलोक या स्वर्गलोक आदि की भी सत्ता है, जहां पर कि धर्मयुक्त कर्म करने वाले को सुख और अधर्मयुक्त कर्म अर्थात अकर्तव्य करने वाले को दुख मिलता है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि हमारे जो माता पिता बहन भाई पत्नी पुत्र आदि है, क्या उनसे हमारा यह लौकिक नाता ही एकमात्र और आदर्श नाता है, या इस नाते से भिन्न श्रेष्ठ और स्थायी कोई अन्य संबंध भी है। इन सभी बातों को जानने के बाद ही तो उनके प्रति हमारा कर्तव्य निर्धारित होता है। अतः यह सभी बातें भी कर्तव्य ज्ञान की परिधि में आ जाती है। जब तक मनुष्य यह सारा ईश्वरीय ज्ञान स्पष्ट रूप से प्राप्त न करे, तब तक तो उसे कोई न कोई अकर्तव्य अथवा पाप होता ही रहता है। क्या दान पुण्य करने से मनुष्य का कर्तव्य पूरा हो जाता है? आज कुछ लोग कहते हैं गरीबों को अन्न दान देना है, रोगियों के लिए औषधालय खोलना है, दूसरों की सेवा करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। परंतु इस विषय में ध्यान देने के लिए एक नुक्ता यह है कि इतने काल से गरीबों को अन्न धन आदि दान दिया जाता रहा है, रोगियों के लिए अस्पताल भी खोले जाते रहे हैं, दूसरों की सेवा भी समाज सेवक या पड़ोसी या दयालु वृत्ति के लोग तो करते ही आए हैं, परंतु फिर भी आज संसार में किस कर्तव्य की कमी है कि आज भी रोगियों से अस्पताल भरे पड़े हैं, नए नए रोग लोगों को हो रहे हैं, करोड़ों लोग आज भी गरीब है और लाचार है, तथा दूसरों की रक्षा तथा सेवा के मोहताज है। आज जिस रफ्तार से अस्पताल बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से जनसंख्या और रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। अतः यह संसार स्वर्ग तो नहीं बन रहा है, यहां सब प्रकार के यत्न होते हुए भी दुख और अशांति कम तो नहीं हो रही है, उनका केवल रूप ही बदल रहा है, यह हो सकता है। बल्कि यूं कहा जा सकता है कि इस प्रकार की स्थूल सेवा से तो दूसरों को पराश्रय बनाया जाता है, उन पर कर्मों का और भी अधिक बोझा अथवा ऋण लादा जाता है, और कर्मों की जंजीरों में एक दूसरे को और अधिक जकड़ा जाता है। सर्वोत्तम सेवा तो यह है कि मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान देकर कर पुरुषार्थ परायण आत्मनिर्भर और सत्कर्म करने वाला तथा पूर्व काल में किए गए अकर्तव्यों को धोने वाला सामर्थ्य वाला तथा कर्मयोगी बनाया जाए। कर्तव्य और अकर्तव्य को अलग करने वाली रेखा, यह जो प्रश्न है कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसका उत्तर अब प्रशस्त है। कर्तव्य और अकर्तव्य को करने अलग करने वाली लकीर अथवा रेखा प्रभु ने अपने हाथों से खींच दिए। जिस भूल के कारण इंसान का कर्तव्य अकर्तव्य में बदलकर दुख की प्रलब्ध देता रहा है, उस भूल को अब हमें परमपिता परमात्मा शिव ने सुधारने की सहज युक्ति बता दी है, जिस चाबी से स्वर्ग के सुखों के खजाने हमारे हाथ लग सकते हैं, और जिस मंत्र से इस संसार के नर नारी नदी पहाड़ फूल क्यारियां सरकारी कर्मचारी और मजदूर व्यापारी सभी सुख देने वाले साधन बन सकते हैं। वह चाबी वह मंत्र अब उस कल्याणकारी परम पिता परमात्मा ने हमें सुझा दिया है। कौन सी है वह लकीर? कर्तव्य और अकर्तव्य को अलग करने वाली, क्या आप अब जान गए हैं? वह है देही निश्चय आत्मस्मृति अथवा स्वयं को अनादि अविनाशी आत्मा परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान निश्चय करना। यदि मनुष्य स्वयं को आत्मा निश्चय करके आत्मा स्वरूप में स्थित होकर कर परम पिता परमात्मा की स्मृति में टिक कर अर्थात योग युक्त होकर कर कर्म करता है तो उसका कर्म धर्म युक्त है और वह स्वयं एक कर्म योगी है। तब मानो कि वह सत्कर्म या कर्तव्य करता है। जो स्वयं को देह निश्चय करके बरतता या व्यवहार करता है उसका कर्म कर्तव्य की रेखा को लांघ कर अकर्तव्य की परिधि में चला जाता है। संसार में सभी प्रकार की युक्तियों विचारों औषधियों या साधनों को अपनाकर देखा गया है कि वह मनुष्य मात्र के लिए कहां तक लाभकारी है सिद्ध होती है, परंतु परमपिता परमात्मा द्वारा दी हुई इस परम युक्ति परम औषधि परम मंत्र परम पुरुषार्थ को अपनाकर नहीं देखा गया है, इसीलिए आज संसार दुखी है। अब इस कल्याणकारी युक्ति के प्रयोग से लाखों जनों को सुख प्राप्त रूपी रस मिल रहा है और इस प्रयोग से साक्षात प्रत्यक्ष है कि जो इसे अपने जीवन में धारण करेंगे वे भी अवश्य ही कल्याण के भागी बनेंगे। कर्मयोगी कर्तव्य परायण तथा पवित्र बनने वाले नर को निश्चित ही आत्मिक सुख मिलेगा। कर्मयोग और निसंकल्प समाधि, निरसंकल्पता एक ऐसा दिव्य गुण है जिसको धारण करने से मनुष्य की सभी चिंताएं मिट जाती है। इस गुण द्वारा मनुष्य को सच्ची शांति मिलती है और उसकी बुद्धि व्यर्थ चेष्टाओं तथा मिथ्या विचारों से रिक्त होकर कर योग का आनंद अनुभव करने में लग जाती है। निरसंकल्पता का अर्थ जड़ वस्तु की भांति संकल्प शून्य या अचेतन होना नहीं है, बल्कि निरसंकल्पता के 5 मुख्य जीवन उपयोगी अर्थ है जिन्हें अपनाने से मनुष्य गृहस्थ में रहते हुए भी योगी जीवन का आनंद पाता है और देव पद का अधिकारी हो जाता है। पहले की बीते हुए वृत्तांतों के बारे में निरसंकल्पता। निरसंकल्पता का गुण धारण करने का एक भावार्थ तो यह है कि कर्म करने के बाद उसका जो परिणाम निकलता है उसके विषय में मनुष्य को अधिक संकल्प नहीं चलाने चाहिए, उसे किसी वृत्तांत अथवा घटना का बारंबार चिंतन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक मनुष्य ने अपने घर में मेज पर पड़ी हुई अपनी घड़ी को उठाया, परंतु उठाते समय वह घड़ी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और टूट गई और वह सोचने लगा है, हाय ये क्या हो गया, पता नहीं किस मनुष्य ने यह घड़ी यहां पर रख दी थी, क्या यह अच्छा होता कि मैं इस समय इस घड़ी को हाथ न लगाता, मेरा तो भाग्य ही भुटक गए हैं, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों होती है। इस प्रकार के व्यर्थ संकल्प करने वाले मनुष्य को निरसंकल्प माने कि पहले तो इस लेख में निरसंकल्पता का जो अर्थ है व्यर्थ संकल्प या विकारी संकल्प का न होना। मैं ये बता रहा था कि इस प्रकार के व्यर्थ संकल्प करने वाले मनुष्य को निरसंकल्प नहीं माना जाता। निरसंकल्प अवस्था वाले मनुष्य को तो यह सोचना चाहिए जो होना था सो हो गया, अब पछताने का कोई लाभ नहीं है, भविष्य में मुझे सावधानी बरतनी चाहिए और जब भी संभव हो मुझे इस घड़ी को ठीक करा लेना चाहिए। बस इतना मात्र सोचकर वह बार बार इस घटना का चिंतन नहीं करता बल्कि शांत चित्त हो जाता है। वह घटना को एक होनी अथवा नियति माने डेस्टिनी मानकर शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता है और अपना समय तथा शक्ति व्यर्थ संकल्प में नहीं गमाता। वह जानता है कि संसार की सभी वस्तुएं विनाशी होती है, उसके अनायास नाश अथवा हार से मनुष्य को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की खुशी अथवा शांति इन वस्तुओं से अधिक मूल्यवान है। वस्तुओं को गवा बैठने के साथ अपने ही संकल्पों से अपनी खुशी को भी गवा देना गोया अपनी कब्र पर खुद बैठ कर जिंदा ही उसमें दाखिल होना है। परंतु योगा अभ्यास के लिए तो हर हालत में संतुष्ट, मुदित, खुश अथवा निरसंकल्प रहना जरूरी है। इसी प्रकार मान लीजिए कि एक मनुष्य बस में जा रहा था, वहां भीड़ में किसी ने उसकी जेब काट ली। बाद में जेब को संभालने पर उसे यह मालूम हुआ कि कोई उसकी जेब काट गया है। अब यदि वह व्यक्ति व्यतीत होकर कर स्वयं को कोसता है, दूसरों से झगड़ा करता है और इस प्रकार सोचता है, आज तो मैं घर से बाहर ही नहीं जाता तो ठीक होता, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरे हाथों से यह दुर्घटना घटी, पता नहीं कौन सी मुसीबत है मुझे इस बस में ले आई, मैंने आज मेरी जेब में इतने पैसे डाले क्यों, क्या जेब कतरे को इन सभी आदमियों में मेरे सिवा और कोई दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार का चिंतन करने वाले मनुष्य को निरसंकल्प नहीं कहेंगे, बल्कि उसे चंचल स्वभाव वाला अथवा विक्षिप्त चित्त वाला मानेंगे। इसकी बजाय यदि अब जेब कतरे को पकड़ने का कोई उपाय हो सकता हो तो ठीक, वरना मनुष्य को यह सोचकर तुरंत शांत हो जाना चाहिए कि जो होना था सो हो गया, अब आगे के लिए मैं सावधानी बरतूंगा। ऐसे ही मनुष्य को हम निरसंकल्प मानेंगे। ऐसी निरसंकल्पता ही योग में सहायक होती है। इसी प्रकार मान लीजिए कि कोई मनुष्य घर से निकलकर जब बस स्टैंड के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि जिस बस में वह जाना चाहता था वह बस तो आधे मिनट पहले ही उस स्टैंड से रवाना हो गई थी और सामने ही जाती हुई दिखाई दे रही थी। वह मन में सोचने लगा, हाय मैं तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया हूं, बस वाला भी कैसा निकम्मा आदमी है, आज वह बस को जल्दी लेकर के आ गया, मुसीबत ही मुसीबत है, जो होता है सब उल्टा ही होता है, अगर मैं घर से दो मिनट पहले निकलता तो मेरे को बस मिल जाती, परंतु अब तो बस चली गई। इस तरह की बीती को बिसरने की बजाय जो व्यक्ति व्यर्थ का संकल्प चलाता है वह गोया स्वयं को जिंदा चिता पर जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है। अतः स्वयं को बीती हुई बात पर खड़ा न करके स्वयं को उससे अलग और साक्षी मानना ही गोया निरसंकल्पता का गुण धारण करना है। अनादि संकल्प से बनी हुई इस सृष्टि में अगर किसी वृत्तांत के कारण असमंजस्य में पड़कर कोई मनुष्य आत्मा यह संकल्प उठाती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा न करकर वैसा होना चाहिए था, तो मानो कि वह अनादि संकल्प की सृष्टि पर स्थित न रहकर कर जो आत्मा अपने संकल्प की सृष्टि रचती है, अर्थात ऐसा न करकर वैसा होना चाहिए था ऐसी सृष्टि रचती है, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, वैसा होना चाहिए था, इस प्रकार का संशयात्मक संकल्प अथवा व्यर्थ चेष्टा उत्पन्न करती है, तो मानो कि वह अपने लिए कर्म बंधन जुटाती है अथवा कर्मों का हिसाब किताब बनाना शुरू करती है। ऐसी मनुष्य आत्मा का योग नहीं लग सकता और वह शांति तथा आनंद प्राप्त नहीं कर सकती। गृहस्थ मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं तो प्रायः आएंगी ही, अतः उसे अपने मन में ऐसे तूफान नहीं आने देना चाहिए, बल्कि मन को निरसंकल्प की स्थिति में रखना चाहिए, तभी उसका योग प्रभु से एक टिक लगा रह सकेगा। दूसरे के भविष्य के बारे में व्यर्थ का संकल्प नहीं करना। निरसंकल्पता का दूसरा भावार्थ यह है कि मनुष्य कर्म करते हुए भविष्य के फालतू और अयोग्य चिंतन न करे। उदाहरण के तौर पर यह न सोचे कि हाय अब मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, अमुक व्यक्ति तो मेरी बात मानेगा ही नहीं मानेगा, यदि वह नहीं मानेगा तो मेरा जाना ही व्यर्थ हो जाएगा। परिणाम से पहले ही इस प्रकार के व्यर्थ संकल्प करना, स्वयं को असमंजस या दुविधा में डालना और निर्बल बनना ही और निराशा का गड्ढा खोदकर उसमें कूदना है। इसकी बजाय तो जो व्यक्ति किसी शुभ कार्य को अपना कर्तव्य समझकर उसे करने लग जाता है और अनागत तथा भविष्य का व्यर्थ चिंतन नहीं करता अथवा स्वयं ही अपने सामने हवा लाकर कर स्वयं को नहीं डराता, वही निरसंकल्प है। वह मनुष्य असफलता में भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह तो कर्म को अविनाशी जानकर अपने कर्तव्य को, ड्यूटी को मीठा मानकर श्रेष्ठ कर्म के अंत को श्रेष्ठ समझता है और उसे करने में खुशी मानता है। इसी प्रकार मान लीजिए कि किसी मनुष्य के पुत्र को दफ्तर से लौटने में एक आध घंटा देरी का समय हो गया। वह सोचने लगा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि आज उसके साथ में कोई दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गई है। वह सड़क पार कर रहा होगा, उधर से किसी सरकारी बस गुजरी हुई होंगी और वह उसके नीचे आ गया होगा। फिर लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए होंगे। अब वह किसी अस्पताल में बेहोश पड़ा हुआ होगा, पता नहीं वो किसी अस्पताल में होगा या जीवित होगा भी या नहीं होगा, मर गया होगा। शायद वह सड़क पर ही पड़ा हुआ होगा और किसी से वहां पर किसी ने इस डर के मारे उसको उठाया ही नहीं होगा कि पुलिस हमको पकड़ लेंगी और कहेंगी कि आपने इसे मारा है। हाय, बस के ड्राइवर भी तो अंधे होकर कर बस चलाते हैं, उनका अपना बच्चा मरे तो उनको मालूम हो कि बच्चे की मृत्यु कितनी दुखदायक होती है। पहले जब बसें नहीं होती थी तो वो जमाना कितना अच्छा होता था। इस प्रकार के संकल्प उत्पन्न करने वाला रोता है और मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेता है, संबंधियों के पास सूचना भेज देता है कि मालूम होता है कि मेरा अमुक पुत्र आज दुर्घटना से मर गया। स्पष्ट है कि इस प्रकार का चिंतन करना गोया मकड़ी की तरह अपने मुख से जाला निकालकर स्वयं ही उसमें फंस जाना है। यह तो स्वयं को दुखित करना के लिए चिंता की ज्वाला जलाकर उस पर व्यर्थ संकल्पों का तेल छिड़कना है। हमेशा मनुष्य को भला ही सोचना चाहिए और शांत रहना चाहिए। दुर्घटना घटी या नहीं घटी इसका पता ही ना हो और मनुष्य उसके लिए घर में दूसरों के हृदय की गति को रोकने यानी हार्ट फेल करने जैसी स्थिति पैदा कर दे, यह तो मन की विक्षेपता, उग्रता अथवा अनियंत्रणता है। जैसे बेलगाम घोड़ा आखिर अपने सवारी के लिए संकट पैदा कर देता है, वैसे ही बेलगाम मन भी मनुष्य को तीव्र गति से दुख के संकटमय मार्ग से मृत्यु की खाई में ले जाता है। ऐसे वृत्ति बनाए रखने से भला योग कैसे लग सकता है? योगा अभ्यास करने वाले मनुष्य को तो एकाग्र करना होता है और व्यर्थ संकल्पों को रोकना होता है। अतः योग समाधि की इच्छा करने वाले को चाहिए कि वह निर्संकल्प समाधि में रहे, अर्थात हरेक परिस्थिति में व्यर्थ संकल्प विकल्पों को छोड़े। निर्संकल्प मनुष्य वह है जो पहले सारी स्थिति का सर्वेक्षण करता है, निश्चित रीति से वास्तविकता को जानने का यत्न करता है। वह संसार सागर की लहरों में बह नहीं जाता बल्कि साक्षी होकर कर इस विराट नाटक को देखता है। वह समझता है जो कुछ भी हो रहा है वह इस विराट नाटक की एक अनादि नाटकीय योजना के अनुसार ही हो रहा है। वह कर्म विधान के अनुसार ही ठीक ही हो रहा है, भावी अटल है। इसीलिए मनुष्य को दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि अपने से जो ठीक हो सके उसे ही शांति तथा संतोष पूर्वक करना चाहिए। स्पष्ट है कि निरसंकल्पता के गुण को धारण करने में ही मनुष्य को शांति मिल सकती है, वरना तो मनुष्य का मन क्षण क्षण के बाद कोई दूसरा ही दुखी होने का कारण ढूंढ ढूंढकर स्वयं को ही व्यथा और शोक से पीड़ित करता रहेगा। चित्त की शांत भूमिका में ही योग का अभ्यास किया जा सकता है। तीसरे की अवकाश के समय स्वरूप में निष्ठ होना। निरसंकल्पता का तीसरा भाव यह है, जब मनुष्य कार्य व्यवहार से अवकाश प्राप्त करे तो कछुए की तरह कर्म इंद्रियां समेट कर सांसारिक और व्यवहारिक संकल्पों को छोड़कर स्वरूप निष्ठ हो जाए। इस बात को सभी लोग मानते हैं कि अहम आत्मा का मूल स्वरूप तो है ही निरसंकल्पता। जब तक आत्मा मुक्ति की अवस्था में होती है तो निर्संकल्प और शांत होती है। फिर जब आत्मा मुक्ति धाम अथवा ब्रह्मलोक से उतरकर इस कर्म क्षेत्र पर आती है और शरीर का आधार लेती है, तब वह पहले केवल शुद्ध ही संकल्प उत्पन्न करती है। अतः अब जबकि पहले मुक्ति धाम में लौटना ही हमारा लक्ष्य है, तो हमें निराकारी, निर्विकारी और निर्संकल्प अवस्था में स्थित होने का अभ्यास करना चाहिए। अब निर्संकल्पता हमारा मुख्य गुण होना चाहिए। पहले निर्संकल्पता को धारण करके पीछे ही हम शुद्ध संकल्प में उतरना चाहिए। अतः निर्संकल्पता का भावार्थ यह है कि जब मनुष्य स्वरूप स्थित में भावार्थ अथवा निराकारी, निर्विकारी, निर्संकल्प परम पिता परमात्मा की स्मृति के पुरुषार्थ के लिए बैठता है, तो उस समय उसे इधर उधर के या आगे पीछे के संकल्प उत्पन्न नहीं करने चाहिए कि कल दुकान पर जाकर कर मैं अमुक धंधा करूंगा, अथवा दफ्तर में जाकर कर अमुक फाइल देखूंगा, अथवा कि अमुक व्यक्ति मुझसे ठीक व्यवहार करेगा या करता है या नहीं करता है आदि आदि। जबकि हमारा मूल स्वरूप है ही निर्संकल्प और निराकारी तथा निसंग माने कि असंग, और उसमें ही टिकने का कार्य अभी हम कर रहे हैं, तो साकारी अथवा शरीर संबंधी संकल्प अब उत्पन्न होने ही नहीं चाहिए, बल्कि सांसारिक संकल्पों से निवृत्त माने कि निर्संकल्प होकर कर परम पिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होना चाहिए। बस ज्योतिर्स्वरूप परम पिता परमात्मा की स्मृति में एक टिक स्थिति ही तो योग है। चौथे के कर्म करते हुए परमार्थ चिंतन, ज्ञान मंथन अथवा ईश्वरीय स्मृति, अभी की गई चर्चाओं में निर्संकल्पता के गुण के तीन पहलुओं पर हमने विवेचन कर अभी आए हैं। एक तो यह कि कर्म करने के बाद जब परिणाम सामने आता है तो उस समय निर्संकल्प अवस्था या सहज समाधि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। दूसरे यह कि कर्म प्रारंभ करते समय निर्संकल्पता का गुण धारण करने का क्या भाव है। तीसरे यह कि जब कर्म से हम फारिग होए तो निर्संकल्पता की पराकाष्ठा में हम निर्संकल्प समाधि में स्थित होने का क्या अर्थ है। अब हमें यह स्पष्ट करना है कि जब कोई मनुष्य ऐसा कार्य कर रहा हो जिसमें कि उसकी बुद्धि को पूरी तरह लगाने की आवश्यकता हो न हो, तो उस कर्म को करते हुए भी अनन्य सांसारिक संकल्पों को उत्पन्न न करके ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव, संबंध आदि की स्मृति में रहना ही निर्संकल्पता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई स्त्री बर्तन साफ कर रही थी या कर रही है। इस कार्य को करते हुए यदि वह मन में यह सोच रही है कि देखो तो सही मेरे बच्चे कितने खराब है, वे मेरी एक भी बात नहीं मानते, मेरा पति भी उन्हें कुछ नहीं कहता, यह कैसी विकट समस्या है, ओहो मैं तो भूल गई आज तो सिनेमा जाने का प्रोग्राम बनाया था और सखियों ने भल्ले पकौड़ी की महफिल का वचन दिया था आदि आदि। इस प्रकार मन को इधर उधर भगाना व्यर्थ में थकाना ही तो है, जबकि अभी बर्तन मानने का ही कार्य हो रहा है, बच्चे स्कूल में तथा पति दफ्तर में है और जैसे कैसे आज सखियों के साथ महफिल का प्रोग्राम ही नहीं है तो फालतू उधड़ बुन से क्या लाभ है। अतः इन सांसारिक संकल्पों की बजाय स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए बुद्धि को परमात्मा के गुणानुवाद में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि वह परम पिता तो सबके सदगति करने वाले तथा कल्याणकारी है और उनके प्रेम में तथा उनकी लगन में रहते हुए कार्य को करना गोया निर्संकल्पता की अवस्था को धारण करना है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कि कोई व्यक्ति टांगे में बैठा हुआ जा रहा है या गाड़ी में किसी बैठा हुआ जा रहा हुआ है। अब इस समय यदि वह यह सोच रहा है कि मेरा एक दोस्त जलंधर में है, उससे मिले हुए कई वर्ष बीत गए हैं, अब तो मेरे भाई का बच्चा काफी बड़ा हो गया है, परसों तो हमें तनख्वाह माने की वेतन भी मिल जाएंगी, मेरा अफसर भी अजीब आदमी है, यह सरकार भी निकम्मी है। क्या ही अच्छा होता कि मैं इंजीनियरिंग ही पढ़ लेता, इस प्रकार की इधर उधर की जो संकल्प करना है वो गोया समय को व्यर्थ ही गंवाना ही तो है। ऐसे ऐसे समय पर मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि को परमार्थ में अथवा सत्संग में लगाए, अर्थात स्वयं सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थिर हो जाए। अनन्य संकल्प न करके ईश्वरीय स्मृति में मन को टिकाना ही निर्संकल्प अवस्था को धारण करना अथवा निर्संकल्प समाधि में टिकना है। पांचवे की न्यारापन ही निर्संकल्पता है। निर्संकल्पता का एक भाव भावार्थ यह भी है कि मनुष्य न्यारा होकर कर रहे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी का पुत्र विद्या अध्ययन के लिए ठीक तरह से परिश्रम नहीं करता, माने पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक तरह से परिश्रम नहीं करता है, वह परीक्षा में असफल हो जाता है यानी नापास हो जाता है। यह जानकर कर अब वह मनुष्य रात दिन इसी चिंता में लगा हुआ रहता है, इसका क्या होगा, इसने तो मुझे बड़ा परेशान कर दिया है, यह तो पैदा होता ही मर जाता तो अच्छा होता, इसको तो मैं खूब पीटूंगा आदि आदि। स्पष्ट है कि इस प्रकार का चिंता और क्रोध द्वारा अपना ही स्वास्थ्य बिगाड़ना तथा घर के वायुमंडल को भी अशांत करना और अपने स्वभाव को चिड़चिड़ा उदास तथा उद्गनित बना लेना है, गोया अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी मारना है। निर्संकल्प मनुष्य समझता है कि हर एक आत्मा के संस्कार कर्म और भाग्य आदि अपने अपने हैं, इसीलिए यदि वह बच्चा मेरे कहने के बावजूद भी विद्या की प्राप्ति को भी की ओर ध्यान नहीं देता है तो मैं और क्या कर ही क्या सकता हूं, इसके कर्म इसके साथ, मैं व्यर्थ में निज आत्मा को पीड़ित क्यों करूं। मेरा कर्तव्य है इसे विद्या प्राप्ति आदि के लिए सुविधाएं देना तथा विद्या के महत्व पर इसे समझाना। फिर यदि किन्हीं पूर्व कर्मों के प्रभाव के कारण मेरी बात इसकी समझ में नहीं बैठती है तो इसका ऐसा ही नसीब है, ऐसा ही भाग्य होगा। इसमें चिंता करके अपने जीवन को बिगाड़ना तो गलती ही है। इस प्रकार वह संबंधियों देशवासियों तथा समाज आदि के प्रति हित भाव से कर्तव्य तो निभाता है परंतु यह सब करने के बाद निश्चित और निर्संकल्प हो जाता है। इस युक्ति के फलस्वरूप उसके जीवन में सुख शांति की बेला लहलहाती है और यह वह कभी भी शोक चिंता तथा अशांति का शिकार नहीं होता बल्कि सहज समाधि में रहता है। जो मनुष्य इस प्रकार से न्यारा या निर्संकल्प नहीं रहता, वह पर चिंतन करता है प्रभु चिंतन नहीं करता, वह ईश्वर को याद न करके मनुष्य को याद करता रहता है और वह निर्संकल्प समाधि के परम सुख से वंचित रहता है। निर्संकल्प समाधि से होने वाला सुख ऐसा सुख है जिसके सामने संसार के अपार खजाने भी तुच्छ है। इससे मनुष्य को ऐसा अद्भुत आंतरिक सुख अथवा आनंद का अनुभव होता है कि जो अवर्णनीय है। योगा अभ्यासियों के लिए धारणाएं। योग का अभ्यास करने वाले मनुष्य के सामने कई प्रकार की परीक्षाएं अथवा विघ्न आते हैं। अगर मनुष्य को आगे बताई हुई बातों में निश्चय हो अथवा यदि आगे बताई हुई धारणाएं उसके जीवन में हो तो उसे योग में अच्छी स्थिति प्राप्त हो सकती है। पहले की पवित्रता शांति और परमात्मा ही सच्चे आश्रय है। आज कोई मनुष्य स्वयं को हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई और अन्य कोई किसी कोई धर्म को मानता है परंतु योगी तो पवित्रता और शांति को ही अपना स्वधर्म निश्चय करता है अथवा वह आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही अपना धर्म मानकर पवित्र शांत और दैवी गुण संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करता है। ज्ञान रहित भक्त मनुष्य तो अपने शास्त्र गुरु कर्मकांड इत्यादि को ही कल्याणकारी समझकर उसी में लगा रहता है परंतु जो योग का अभ्यास करना चाहता है वह केवल परम पिता परमात्मा ही को कल्याणकारी मानकर उसी में ही अपना मन लगाता है। उसे कर्मकांड आदि आदि भी थोथे लगते हैं। वह इन सब आधारों को छोड़कर एक परम पिता परमात्मा ही का आश्रय लेता है और सच्चे हृदय से उन्हीं की शरण में जाता है। वह लौकिक गुरुओं और पोथियों के भरोसे पर नहीं चलता, बल्कि निराकार परम पिता परमात्मा ही के एक बल एक भरोसे पर चलता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि काम क्रोध लोभ मोह एवं अहंकार इत्यादि बलि विकारों पर विजय प्राप्त कराने का बल केवल एक सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा में ही है, अन्य किसी में नहीं। उनका मन अन्य सबसे हट जाता है और अत्यंत स्नेह से एक परमात्मा परम पिता परमात्मा से जुट जाता है अथवा जुटाना चाहता है। वह मनमत और गुरुमत इत्यादि की भेड़ में एक निराकार परम पिता ही के मत को सर्वश्रेष्ठ निश्चय करता है और संसार के लोग चाहे उसे कितना भी रोकी टोकते रहे, वह मस्त कलंदर की तरह प्रभु का ही हो जाता है। मनुष्य की इसी वृत्ति को ही सर्वोत्तम संन्यास वृत्ति कहते हैं, क्योंकि भगवे कपड़े वाले सन्यासी तो केवल घर बार और वस्त्रों ही का संन्यास करते हैं, किंतु थोथी पंडिताई से उनका मोह नहीं टूटता। परंतु सच्चा सन्यासी तो मित्र संबंधियों के बीच में रहते हुए भी ममता का संन्यास करता है और उसका मन और कहीं न जाकर एकमात्र परम पिता परमात्मा ही की ओर जाता है। गृहस्थ में रहते हुए योगाभ्यास करने के लिए ऐसी ही वृत्ति अथवा ऐसा ही संन्यास होना जरूरी है। दूसरे की परमात्मा की सतयुग की रचना सुखदायी होती है। मिथ्या ज्ञानी मनुष्य यह मानते हैं कि सुख और दुख दोनों परमात्मा ही देते हैं, परंतु योगी सदा इसी निश्चय में रहता है कि परमात्मा परम पिता तो कल्याणकारी है, वह तो सुखदाता और शांतिदाता है, वह तो दुख भंजक है, वह किसी को भी दुख नहीं देते। दुख तो माया अथवा मनुष्य के अपने ही किए हुए पाप कर्मों का ही परिणाम है। परमपिता तो मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता है, वही तो सदगति दाता है। यह जो दुख दारिद्र और दुर्गति की दुनिया है, इसके रचयिता परमपिता परमात्मा नहीं है, बल्कि वे तो संपूर्ण सुख और शांति वाली दुनिया सतयुगी और त्रेतायुगी दुनिया के रचयिता है, जिसे स्वर्ग जीवन मुक्त दुनिया अथवा वैकुंठ कहते हैं। परमात्मा तो मनुष्य आत्मा को दुखी दुनिया से दूर मुक्ति धाम में, जहां से मनुष्य आत्माएं यहां आई है, वापस ले जाती हैं। अतः अज्ञानी मनुष्य जिन परिस्थितियों में भगवान को भी बुरा भला कहता है और उस पर दोष धरता है, योगी उन परिस्थितियों में निरसंकल्प रहता है और परम आत्मा को परमात्मा को और मुक्ति धाम तथा जीवन मुक्ति धाम को अधिक ही याद करता है, क्योंकि उसका यह अटूट निश्चय होता है कि सभी संकट अपने ही विकर्मों के कारण सामने आते हैं और परमात्मा तो संकट मोचन है। अतः वह खूब दिल से परमपिता परमात्मा से प्यार करता है, कारण कि वह जानता है कि वही तो इससे छुड़ाने वाले और वही तो मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में ले चलने वाले हैं। तीसरे भावी अथवा नियति में निश्चय। अज्ञानी मनुष्य छोटी सी आपदा आने पर अथवा कुछ भी विपरीत परिस्थिति होने पर घबरा जाता है, दुखी होने लग जाता है और अपने शांत रूपी स्वधर्म को छोड़ देता है। परंतु योगी का यह निश्चय दृढ़ रहता है कि हमें कर्म ही करना चाहिए, उसके फल के लिए आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए। योगी जानता और मानता है कि भावी बनी हुई है अथवा इस सृष्टि रूपी विराट नाटक की एक नियति प्री डिसाइडेड प्लान है, उसके अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। अतः चिंता करना, व्याकुल होना या दुखी होना मूर्खता है। वह जानता है कि परमात्मा ही की याद में रहने से बिगड़ी भी संवर जाती है अथवा सहन करने की शक्ति मिलती है। अतः वह व्यतीत होकर अधीर होकर योग युक्त नहीं होता है और योग युक्त होता है। वह हाय हाय न करके हरी हरी करता है, वह मरा मरा न बोलकर कर राम राम की स्मृति में रहता है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज को समझने के कारण नाराज नाराज माने ना राज नहीं होता हो। जो मनुष्य भावी अथवा नियति में निश्चय नहीं करता उसकी अवस्था अडोल नहीं हो सकती, उसकी समाधि सहज और सुदृढ़ नहीं हो सकती, उसका योग अटूट और अखंड अथवा निरंतर और निर्विघ्न नहीं हो सकता। संसार के कलह कलेश अथवा हानि लाभ निंदा स्तुति उस ही के लिए व्यवस्था का रूप धारण करते हैं जो इस संसार की विधि विधान को अथवा इसकी भावी और नियति को नहीं जानता। वरना जो भावी में निश्चय रखता है वह एक रस अवस्था में रहता है, उसका मन योग के सिंहासन से कभी नीचे नहीं उतरता, उसकी निष्ठा कभी भी भंग नहीं होती, बल्कि उसका मन परमात्मा पर एक टिक हो जाता है और हुआ हुआ ही रहता है। चौथा, परिवर्तन और परिणाम। योगी जीवन का आनंद चाहने वाले मनुष्य का यह निश्चय भी अटूट रहना चाहिए कि इस संसार की सभी चीजें नश्वर हैं और यहाँ के सभी पदार्थ परिवर्तननीय हैं। अज्ञानी मनुष्य इस बात को भूल जाता है अथवा वह इस बात को व्यवहार में नहीं लाता, इसीलिए जब उसका कोई संबंधी शरीर छोड़ता है तो वह रोने लगता है, जब कुछ धन की हानि होती है तो वह उदास हो जाता है। वह यह याद नहीं रखता कि परिवर्तन तो इस संसार के पत्ते पत्ते पर लिखा हुआ है, परिणाम अथवा विनाश तो इस लोक के कण कण में अंकित है। इसका नाम ही संसार अर्थात चलने वाला अथवा जगत अथवा गति वाला है। यहां कोई भी चीज वैसी की वैसी नहीं खड़ी है, बल्कि सब कुछ बदलता जा रहा है। जो मनुष्य योगी होता है वह इस बात को याद रखता है और इसीलिए हानि लाभ अथवा निंदा स्तुति की परिस्थिति में एक समान रहता है, क्योंकि उसका यह निश्चय होता है कि यह परिस्थिति भी परिवर्तन के चक्कर में आएंगी, यह भी रहनी नहीं है। वह संसार को परिणामी और क्षणभंगुर मानकर अपने मन को अपरिवर्तनीय तथा एक रस परमपिता परमात्मा ही में टिकाकर स्थायी सुख लेने का पुरुषार्थ करता है। वह समय को व्यर्थ नहीं खोता, क्योंकि वह जानता है कि उसका शरीर भी परिवर्तनशील और परिणामी ही है और किसी समय भी उसका अंत हो सकता है। अतः वह शरीरांत से पहले प्रभु का प्यार, परमात्मा का प्रेम अथवा उससे पवित्रता का लाभ उठाते रहने की धुन में लगा रहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि योगा अभ्यास में निश्चय का बड़ा महत्व है। कहावत है कि मनुष्य का जैसा निश्चय माने कि फेथ हो, वैसा ही उसका स्वरूप माने कि फॉर्म हो जाता है। निश्चय भेद होने के कारण ही मनुष्य मनुष्य में अथवा देवता और देवता में भेद होता जाता है। इसीलिए गीता के भगवान के महावाक्य है कि मनुष्य का जैसा निश्चय हो वैसा ही वह स्वयं होता है। अतः अभी अभी जो ऊपर जो रहस्य स्पष्ट किए गए हैं, जब उसके अनुसार मनुष्य इसी निश्चय में स्थित होता है कि मैं तो आत्मा हूं, त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिवान, ज्ञान के सागर, शक्ति के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, परमपिता परमात्मा की संतान हूं, पवित्रता और शांति ही मेरा स्वधर्म है अथवा देवी देवता धर्म अथवा दिव्य गुणों की धारणा ही मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, और यह संसार तो एक परिवर्तित होने वाली विराट नाटक है जो कि एक बनी बनाई भावी के अनुसार ही चलता रहता है। मैं तो इसमें अपना पाठ करने के लिए परम धाम से आया हूं और अब मुझे यहां से लौट ही जाना है। सच्चा सुख तो एक परमपिता परमात्मा ही की स्मृति में अथवा उन द्वारा रची हुई सत्युगी सृष्टि में ही है और योगी जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस निश्चय से वह योग स्थित होकर कर समयांतर से पूर्व वह पूर्ण पवित्रता, शांति और सुख अथवा देवी देवता का पद प्राप्त कर लेता है। अब भोगी से कर्मयोगी बनो। कुछ लोग समझते हैं कि गृहस्थ में तो काम विकार की छुट्टी है। वे कहते हैं अभी तो पवित्र रहने की हमारी अवस्था ही नहीं है, जब हम वृद्ध होंगे अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करेंगे तब हम इस विकार को छोड़ देंगे, अभी तो इस विकार का भोगना गृहस्थ का धर्म है। यह तो निभाना ही है, वरना शादी करके और गृहस्थी बनने का कोई अर्थ ही नहीं है। गृहस्थ में इसका भोग करने के लिए तो हमें हमारे धर्मशास्त्र और महात्माओं की आज्ञा है। हाँ, हम दूसरी नारियों के प्रति कुदृष्टि नहीं रखते। वास्तव में इस प्रकार की विचारधारा ही गलत है, क्योंकि जिस गृहस्थ में काम भोग है उसे तो आश्रम की संज्ञा हम दे ही नहीं सकते, कारण कि आश्रम पवित्र स्थान का नाम है। आज लोगों की अज्ञानता और अपवित्रता के कारण घर अलग है अलग और आश्रम अलग बन गए हैं, सो बात ही अलग है। आज भी जब विवाहित होने पर वधु वर के घर आती है तो वर के घर में जो माता पिता कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी हमारे घर में आई है, परंतु वर और वधु की गृहस्थ में काम के प्रवेश हो जाने के कारण वे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की तरह पवित्र नहीं रहते। उनके गृहस्थ में और श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के गृहस्थ में यही तो अंतर है। यदि यह अंतर न होता तो आज गृहस्थी श्री लक्ष्मी श्री नारायण दंपत्ति को क्यों पूछते। अतः अब नारी को श्री लक्ष्मी के समान गुण धारण करने चाहिए और उसे कुलक्षिणी नहीं बनना चाहिए। नर को भी नारायण बनना चाहिए, कामायन नहीं बनना चाहिए। वृद्धा अवस्था में पवित्र बनेंगे ऐसा सोचना भी स्वयं को धोखा देना है। भला सोचिए आज कितने आदमी वृद्धावस्था तक अपने आयु को भोग पाते हैं। अनेक तो वृद्धावस्था से पहले ही मौत के शिकार हो जाते हैं, और फिर वृद्धावस्था में पवित्रता माने ब्रह्मचर्य का प्रश्न ही कहां उठता है। ध्यान देने योग्य बात है कि संस्कार पक्का हो जाने पर तो पुरुषार्थ करना कठिन हो जाता है। अतः बुराई को तो शुरू में ही जड़ से ही उखाड़ देने में ही बुद्धिमानी। आज लोग कहते हैं कि शास्त्रों में केवल 25 वर्ष तक के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम निश्चित किया गया है, परंतु प्रश्न यह है कि आज लोग 25 वर्ष तक पूर्ण रूपेण और मर्यादा पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कहां करते हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रवादी स्वयं कहते हैं शास्त्रों में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के लिए आज्ञा नहीं है, बल्कि यह आज्ञा है कि यदि इसके पश्चात 36 वर्ष तक कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे तो अच्छा है, और उसके पश्चात 48 वर्ष तक पवित्र रहने का व्रत ले तो उत्तम है, और उसके बाद यदि कोई सारा जीवन ब्रह्मचर्य में ही व्यतीत करना चाहे तो अति उत्तम है। इससे स्पष्ट है कि वास्तव में लक्ष्य तो सारा जीवन ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है, परंतु बाद में माने कि द्वापर युग से मनुष्य के लिए 25 वर्ष तो अनिवार्य रूप से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम बनाया गया था। यदि जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन का लक्ष्य सामने न होता तो स्वयं महात्मा लोग सारा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत क्यों धारण किए रहते, और गृहस्थियों को महात्मा न मानकर सन्यासियों को ही लोग महान आत्मा क्यों मानते। तो अब जो मनुष्य गृहस्थ में रहते हुए योगी बनना चाहता है उसे चाहिए कि वह काम विकार का संन्यास करके भोगी से योगी बने। उसका दर्जा घर बार को छोड़ने वाले सन्यासियों से भी ऊंचा रहेगा, तब उसका गृहस्थ सन्यासियों के आश्रम से भी उच्च होगा। अब सृष्टि के लिए संकट का समय है, इस पर भी विशेष बात यह है कि अब का समय तो संकट का समय इमरजेंसी का है। एटम और हाइड्रोजन बम द्वारा सृष्टि के महाविनाश की घड़ी तो निकट है, और पतित पावन परमपिता परमात्मा आसुरी गृहस्थ वाली पतित एवं मर्यादाहीन सृष्टि का महाविनाश करके देवी मर्यादाओं वाली तथा योग बल वाली पावन सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। अतः अब महात्माओं से भी महान जो परम पुनित परमात्मा है उसकी आज्ञा है कि इस अंतिम जन्म के रहे हुए शेष थोड़े से समय के लिए पवित्र बनो, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करो। गृहस्थियों के यहाँ भी जब कोई यज्ञ होता है अथवा उनके घर जब कोई महात्मा आता है तब तो वे भी ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हैं। अतः जबकि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित हुए हैं और उन्होंने यहाँ गीता का ज्ञान यज्ञ स्थापित किया है तो उनकी यह आज्ञा है, ऑर्डिनेंस है कि जब तक यह गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है तब तक पवित्र रहो। क्या गृहस्थ होते हुए काम विकार को जीता जा सकता है? परंतु यह सब सुनने पर भी कई लोग कहते हैं, आज गृहस्थ में रहते हुए इस काम विकार को जीतना भला कैसे संभव है? काम विकार तो स्वाभाविक है, स्त्री और पुरुष आग और कपास के समान है, ये इकट्ठे होंगे तो आग अवश्य लगेंगी। घी का कनस्तर अगर अग्नि के पास पड़ा हो तो पिघलेगा अवश्य ही, अतः घर में रहते हुए काम विकार को जीतना संभव ही नहीं है। परंतु वे भूल जाते हैं कि परमपिता परमात्मा शांति के सागर है, उनके योग से ही यह कामाग्नि शांत हो जाती है। लोग स्वयं ही प्रतिदिन गाते हैं, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। स्पष्ट है कि परमात्मा की कृपा से पहाड़ भी तिनका बन जाता है। अतः जो काम विकार अभी अजेय मालूम होता है, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा से शक्ति प्राप्त करने पर उसे जीतना सहज हो जाता है। परंतु यदि कोई बच्चा यही कहता रहे कि घुटने के बल चलना तो मनुष्य जाति के लिए स्वाभाविक है तो यह उसकी बाल बुद्धि की भूल है। वास्तव में वह बच्चा किसी समर्थ की उंगली पकड़कर खड़ा होकर कर पांव पर चलना सीख सकता है। इसी प्रकार परम शिक्षक एवं सद्गुरु परमात्मा की ज्ञान तथा योग रूपी उंगली पकड़ने से हम पवित्रता के पथ पर चलना सीख सकते हैं, क्योंकि वही एक सर्वसमर्थ है। ऋषि मुनि साधु संत गुरु गोसाई इनके योग्य हमें नहीं बना सकते। इस प्रकार काम रूपी विषय विकार सागर से पार करने वाला पतित पावन वह एक निराकार राम ही है। इसीलिए खेवनहार, तारनहार, पतित पावन इत्यादि शब्दों से एकमात्र उसी ही का गायन होता है। परंतु आज मनुष्य ने जीवन की नैया राम के हवाले करने के बजाय काम के हवाले कर रखी है और फिर कहता है कि इस विषय सागर से पार उतरना असंभव है। कर्मों पर ध्यान दिए बिना मन ठीक नहीं हो सकता। पवित्र बनने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो यह कि पिछले जन्मों के विकर्मों पर जो बोझा मिटाना है, दूसरे यह ध्यान देना है कि अब कहीं विकारों के वश ऐसा कर्म न हो जाए कि जिससे विकर्म का खाता और भी बढ़ जाए। मन के विकारों के तूफान आवेंगे अवश्य, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न होने दो। मन तब सीधा नहीं होगा जब तक कि कर्मों पर कंट्रोल नहीं करेंगे। ऐसे मत समझो कि ज्ञान सुनते सुनते मन अपने आप ही साफ होता जाएगा और विकार मिटते जाएंगे। नहीं नहीं, कथा प्रवचन सुनते सुनते तो द्वापर से और कलयुग गुजर गए, परंतु जीवन अभी भी नहीं बदला है। जब तक कर्मों पर पूरा ध्यान नहीं दोगे तब तक मन ठीक नहीं होगा। मन पर तो पहले से ही पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। अगर आप अब भी मन को बुरे कर्मों से थामेंगे नहीं, सत्य की शक्ति आएंगी कैसे? हमारे जीवन का क्षण क्षण कर्मों के अनुसार ही चलता है। इसीलिए कर्मों के विषय में सावधान होना तो बहुत जरूरी है, वरना मन अपने आप कैसे ठीक होगा? जिन विकर्मों से मैल चला है, अगर वही विकर्म फिर भी करते रहोगे तो मैल उतरेंगे कैसे? कर्मों को पवित्र बनाना ही तो इस समय की सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। योग की कठिनाई का बहाना व्यर्थ है। आप देखेंगे कि मनुष्य हमेशा उसी काम को करता है जो सहज हो। वह कोशिश करता है कि कठिन काम भी किसी तरह सहज हो जाए। परंतु आज लोगों ने यह गलत धारणा बना रखी है कि परमात्मा को याद करना, उसकी स्मृति में मन को स्थित करना बहुत ही कठिन है। उसके लिए हट क्रियाएं करनी पड़ती है, उपवास करने पड़ते हैं, जंगलों में कंद मूल पर निर्वाह करना पड़ता है, आदि आदि। साधु संत भी प्रतिदिन उन्हें अपने व्याख्यान में यही कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, इसीलिए मनुष्य आज पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि मन चंचल है तो चंचल ही सही। वे कभी घंटा आधा घंटा परमात्मा की स्मृति में बैठते भी नहीं तो उनके मन में आनंद रस की प्राप्ति नहीं होती, अतः वे आगे के लिए यत्न करना ही छोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि पता नहीं मन लगेगा भी या नहीं लगेगा। अतः वे सोचते हैं कि आंखें बंद करके 2 सेकंड ईश्वर के प्रति हाथ जोड़ देना ही काफी है, परंतु उन 2 मिनटों में भी उनका मन स्मृति में स्थित का परम आनंद लेने का सौभाग्य नहीं पाता। अब वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य की यह हालत उस परम पिता का तथा अपना यथार्थ परिचय न होने के कारण परमात्मा की स्मृति में एकांतता के बारे में साधुओं के झूठे कथनों के कारण और पुरुषार्थहीनता के भाव तथा आलस्य के भाव के कारण ही है। जरा बताइए कि माँ अपने बच्चे को बोलना सिखाने के लिए कितनी मेहनत करती है, फिर बच्चे को चलना तथा भाषा सिखाने में उसे कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं उसे मेहनत के फलस्वरूप वह बच्चा बड़ा होकर कर कोई बड़ा स्पीकर माने कि वक्ता यानी विचारक अथवा विद्वान एवं गुणवान व्यक्ति बन जाता है। यदि पहले उस पर मेहनत न होती तो वह गूंगा रह जाता और चलने के बजाय सिसक सिसक कर बढ़ता। अतः लोग बच्चों के लिए तो कोशिश करते हैं कि उनका पूरा विकास हो, वे उसे किताबें भी खरीद कर देते हैं ताकि उसकी बुद्धि विकसित हो और वह अपने पांव पर खड़ा हो सके। फिर वे यह भी ख्याल रखते हैं कि उसे कमाई का भी कोई साधन प्राप्त हो, फिर उसको वे घर भी बनवा कर देते हैं ताकि उसको कोई ठिकाना हो और वह कहीं दुखी ना हो। इस प्रकार बच्चे के जन्म के समय से लेकर कर उस पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि इस मेहनत का हजारवा या लाखवा हिस्सा भी मनुष्य अपने जीवन को सच्ची शांति एवं सुख के रसाने के लिए नहीं लगाता, जिससे कि भविष्य में भी वह जन्म जन्मांतर के लिए स्वार्गिक सुख प्राप्त कर ले। इस पुरुषार्थ के लिए तो वह कहता है कि मेरे पास समय नहीं है अथवा कि इस समय इस कार्य में मेहनत करनी पड़ती है, परंतु वह यह नहीं सोचता कि मेहनत तो हर एक कार्य के लिए करनी पड़ती है और मेहनत के बाद ही तो मीठा फल प्राप्त होता है और यह मेहनत तो अतुल्य फल देने वाली तथा अति सहज है। इससे तो मनुष्य सदा के लिए मालामाल हो जाता है। पुरुषार्थ करते करते तो मनुष्य ने रॉकेट बना लिया अथवा एटॉमिक शक्ति खोज डाली। यह कहना कि परमात्मा को याद करना कठिन है, यह तो पुरुषार्थहीनता तथा अज्ञानता की निशानी है। मनुष्य के जितने लौकिक संबंधी आज है उनसे यदि एक और ज्यादा होता क्या वह उसे याद न कर सकता। किसी माँ का यदि एक बच्चा और बढ़ जाता तो क्या वह उसके लिए समय नहीं निकालती। अतः समय न मिलने का या याद न कर सकने का बहाना झूठा है। जो लोग कहते हैं कि मन चंचल है वह टिकता नहीं है, उन्हें सोचना चाहिए कि जब तक यह ज्ञान न हो कि मन को टिकाना कहाँ है वह टिकेगा कैसे। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों पर तो इतना ध्यान देते हो, उन पर धन भी खर्च करते हो, परंतु कुछ तो अपना भविष्य सुधार लो, ज्ञान प्राप्त करके मन की सच्ची शांति का उपाय भी तो कर लो। योगा अभ्यास में विकल्प और विघ्न। कई लोग कहते हैं योगा अभ्यास करने की मनसा से ही हम प्रातः काल उठकर बैठते तो हैं, परंतु मन बहुत तूफान मचाता है, अनेक प्रकार के संकल्पों से चित्त परेशान होने लगता है और अभ्यास हो नहीं पाता। वे पूछते हैं कि अभ्यास में स्थिरता लाने की क्या युक्तियां हैं। हमारे जो मायावी संस्कार हमें अपनी ओर खींचते हैं उनको हम कैसे हटाएं। ईश्वरीय स्मृति में जो आनंद मिलता है और जो शक्ति प्राप्त होती है उसका स्थायी अनुभव हम कैसे पाएं। हमारे इन विकल्पों का कारण और निवारण क्या है। बात यह है कि मन को जो अपनी पुरानी टेव पड़ी हुई है वह तो उसी के अनुसार चलता है। अब उसे ईश्वर की ओर लगन लगाने के लिए 2 मुख्य बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो यह कि ये मायावी विकल्प तभी आएंगे जब तक स्वयं को इस मृत्यु लोक का वासी समझेंगे। अतः युक्ति यह है कि आप इस निश्चय में टिकें कि मैं आत्मा परम धाम का वासी हूं अथवा मैं परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कुछ पाठ बजाने आया हूं। बस मुझे तो अब शीघ्र ही यहां से लौटकर उस ज्योतिर्लोक में, उस शांति धाम में, उस पवित्र पुरी में अथवा उस प्रभु के देश में लौटना है। जब आप परम धाम अथवा परलोक की स्मृति में रहेंगे तो स्थिति भी पारलौकिक अथवा अलौकिक हो जाएंगी। ओम शांति।